जो जो श्रील प्रभुपाद द्वारा कई बार गाए गए थे, हमारे प्रिय गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद द्वारा उनकी प्रार्थनाएं गाए जाते थे। उन्होंने लिखा कि राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं को समझने के लिए वृंदावन भूमि में हमें अपने आप को नम्र बनाना चाहिए और आश्रय ग्रहण करना चाहिए, वृंदावन के षड गोस्वामियों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर कहते प्रार्थना करते हैं, वो दिन कब आएगा जब मेरा मन भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो जाएगा और तब मैं वृंदावन को देख सकूंगा। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमें कहते थे, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर। इस तरीके से कृष्ण हमें देखने के लिए बहुत प्रसन्न हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, कितनी हमारी प्रामाणिक शुद्धता हमारे समर्पण की भावना से। चला प्रभु जी लिखते हैं कि हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एक टिकट खरीदी करने से वृंदावन में नहीं जा सकते, चाहे हवाई जहाज की हो या ट्रेन की या रिक्शा टिकट। लेकिन अक्रूर के पद चिन्हों में चलते हुए हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। पूर्णतया नम्र भाव से मन को पूर्णतया प्रार्थना में मग्न करते हैं, भगवान के सुंदर नाम रूप गुण लीलाओं को याद करते हुए, वो कृपा है। अक्रूर अपने शक्ति के परे उनको वो संग कर रहे थे, कंस का संग कर रहे थे, और वो कंस के कार्य को कर रहे थे। अक्रूर को लज्जा हो रही थी, लेकिन वो ये जानते थे उनका वास्तविक उद्देश्य कि किसी तरीके से भगवान के कार्य को पूरा करना, और वो जानते थे कृष्ण बलराम ये समझ सकेंगे, और वो क्षमा मांगते हुए आश्रय ग्रहण करते हुए वो पूर्णतया मग्न थे, दया के लिए पुकार रहे थे, और इसीलिए वृंदावन उनको प्रकट हुआ। अगर कोई ऐसे ही वृंदावन आ सकता और आध्यात्मिक धाम देख सकता, कल्पवृक्ष चिंतामणि देख सकता हर गाय को कामधेनु के रूप में, हर एक वानर भी कृष्ण का पार्षद है। तो फिर वृंदावन में और भौतिक जगह में क्या अंतर रहता है? इसका हम कृष्ण में यहाँ पर नहीं देख पा रहे, वो हमें दिखाता है जो कृष्ण शास्त्र में बता रहे हैं वो सत्य है। हमारे अंदर लौल्यम या लोभ, ये लोभ होना आवश्यक है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं आश्रय ग्रहण कर हमारी सेवा के द्वारा, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। श्रील प्रभुपाद के कृपा से इतने भक्तों के संग में ये जानने के लिए हम कितने पतित हैं, हम कितने दूर हो गए, और जितना भगवान से अपने दूर मानते हैं उतना हमें तरसना चाहिए, उतना हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित होने के। श्रीमद् भागवतम वो कृष्ण और उनके भक्तों की कथा है। अधिकांश कथाओं में हम जब पढ़ते हैं कैसे भक्तों को चुनौती गई, इतने सारे कठिनाइयां आए, उन्होंने अपनी श्रद्धा नहीं त्यागी। जितने ज्यादा मुश्किलें थे कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हर एक भक्त को अलग अलग तरीके से। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका शीर्ष उनका सिखाना था कि सारे वैदिक शास्त्रों का जो सबसे शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम, सारे शास्त्रों का निष्कर्ष और कृष्ण की ब्रज लीला जो है वही सबसे ज्यादा पराकाष्ठा पर और वृंदावन के सबसे लीलाओं का सबसे ऊंचा स्तर और यह कृष्ण के गोपियों के साथ प्रेम की लीला और सबसे ऊंचा जो प्रकट रूप है वो है राधा और कृष्ण का प्रेम। भगवान चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण जो आए हैं वो अनुभव करने आए हैं और वो प्रेम को राधा का प्रेम बांटने के लिए पूरे दुनिया के साथ। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि भक्ति, भक्ति का मतलब है सेवा करना। हम कृष्ण को और वृंदावन को नहीं देख सकते अगर हम यात्री के रूप में आते हैं। और आज ऐसा बिल्कुल सबके पास जो कैमरा होता है सेलफोन में, आप 10 लाख फोटो ले सकते हैं, लेकिन आप वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। जब कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, जब वृंदावन अपने आप को प्रकट करता है, हमारी भक्ति की प्रामाणिकता से वृंदावन को देखने का प्रयास मत कर, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर। शिल प्रभुपाद और वैष्णव को और पवित्र नाम इस तरीके से कि वृंदावन हमें प्रकट हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु इन दीक्षा लेने के बाद गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद अर्धरात्रि के बीच में वो प्रेम के भाव किसी को बिना कुछ बताए हुए वो जंगल में निकल पड़े, वृंदावन की ओर दौड़ने लगे। उनको कोई रोक नहीं सकता था। जैसे वो दौड़ रहे थे विरह में, अभी उनकी उम्र 24 वर्ष है, उनको लग रहा था कि मैंने अपने पूरे जीवन बेकार कर दिए, अभी मेरे गुरुदेव की कृपा से उनके कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो अग्नि की तरह धधक रहा था। उनका अंततः लक्ष्य और उनका उद्देश्य था सब कुछ त्यागना और वृंदावन जाना। लेकिन उनको एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, देवता कह रहे थे कि हे भगवान, आप इस दुनिया में अवतरित हुए हरि नाम संकीर्तन प्रकट करने के लिए, आप इस दुनिया में आए वृंदावन के प्रेम को प्रकट करने के लिए, नवद्वीप जाने के लिए, आप वृंदावन फिर कभी आ सकते हैं। अंततः भगवान ज्यादा चिंतित थे बद्ध जीवों के लिए, वह नवद्वीप जाना चाहते थे जगाई और मधाई का उद्धार करने के लिए, बजाय इसके कि वृंदावन जाने के। ये उनका भाव था। और 6 वर्ष के लिए उन्होंने नाम संकीर्तन स्थापित किया और नवद्वीप में प्रेम को प्रकट किया, और फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया कटवा में, और अपने आध्यात्मिक नाम और दंड प्राप्त करने के बाद सन्यासी वस्त्र धारण करके वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। केशव भारती महाराज बोले, सब बोले हम भी साथ में जाएंगे, कौन उनका संग त्याग सकेगा। और कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सबको कहा कि कनक नगर वापस जाओ और अपने कुछ ही पार्षदों के साथ वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके हृदय की बात को जानते थे, भक्तों के प्रति प्रेम इतना ज्यादा था कि भक्त प्रेम में विरह में मर जाते। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने दिव्य तरीकों से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर की ओर मोड़ दिया, जहाँ पर नवद्वीप के भक्त शची माता सब मिलने के लिए आए, गौरंग महापुरुष से मिलने के लिए। शची देवी अपने पुत्र के लिए बहुत सुंदर प्रसाद रोज बना रहे थे, उनके गोद में बैठ उनको गले लगाते और वो कहने लगे कि अगर वृंदावन ले गए तो मुझे कभी आपको दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वही कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में रह रहे भगवान जगन्नाथ के रूप में, इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाए, मुझे आपकी लीलाओं का ज्ञान मिलता रहेगा, अपनी प्रिय माता को प्रसन्न करने के लिए वो जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। वो फिर वृंदावन में आए, 12 वनों में भ्रमण के 2 महीने के लिए करीब रहे, फिर वो जगन्नाथपुरी वापस लौट गए अपने कार्य के लिए। उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बताया जो मैं वृंदावन में स्थापना करना चाहता हूँ मैं आपके द्वारा करना करूँगा, मेरी माता की इच्छा से मैं पूरी में निवास करूँगा। और उन्होंने रूप और सनातन को वृंदावन भेजा। गोस्वामी के द्वारा स्थापित विग्रह को समझना, हम मानते हैं वो वृंदावन में प्रवेश करने का वास्तविक भाव है। हमारे वैष्णव शास्त्रों में लिखा गया है युधिष्ठिर महाराज जब उन्होंने सुना श्री कृष्ण भगवान धरती से अप्रकट हो गए, वो व्यक्तिगत रूप से अपने 4 भाइयों के साथ उन्होंने भी घर त्याग दे हिमालय चले गए और परीक्षित महाराज को राजा के रूप में घोषित, जो उत्तरा के पुत्र थे और अभिमन्यु के पेट उनको राजा बनाया गया और उन्होंने स्थापना की वज्रनाभ को जो कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे उनको व्रजधाम के राजा के रूप में स्थापना की। वज्रनाभ वो समझ गए कि कृष्ण के अप्रकट होने के बाद बहुत सारी जो लीला स्थली जो हैं भूल गए हैं, वो यमुना जी के तट के ऊपर बैठे हैं एक कल्प वृक्ष के नीचे और वहाँ उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि आप प्रकट करें, आप मुझे अपना शाश्वत धाम दिखाइए। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शाश्वत लीलाएं प्रकट की वृंदावन की भूमि में। उन्होंने कई स्थानों का जीर्णोद्धार किया और वो वहाँ पर अर्च विग्रह की स्थापना करना चाहते वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण भाग में। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, विग्रह की स्थापना की।
The first
पहली विग्रह जिसको बनाया गया था वो है मदन मोहन। उन्होंने उत्तरा को बुलाया, जिसने कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे अपने आंखों से, और उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल और कमर से नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल पूर्णतया कृष्ण की तरह है। ऐसे तो पूरा ही भाग, लेकिन ये विशेष भाग बताए। फिर उन्होंने एक और विग्रह विश्वकर्मा को फिर से बुलाया। फिर नेक्स्ट गोविंद देव घर निर्माण, और उत्तरा ने जब देखा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, पूर्णतया वो कृष्ण को प्रकट कर रहा है, फिर उन्होंने गोपीनाथ प्रकट किया। कैसे वो अपनी मुरली बजा रहे हैं, वो बिल्कुल कृष्ण की तरह। बहुत सारे विग्रह दूसरे भी स्थापना वज्रनाभ द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया करीब 4,500 वर्ष बीत गए, सभी जो हैं वो विग्रह खो गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए वहाँ पर आदि केशव का मंदिर था, जो केशव मंदिर मथुरा में, और वृंदावन वृंदावन सुंदर वन था। और भगवान चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से कई तीर्थों को खोज रहे थे। वृंदावन से लौटते समय वो श्री रूप गोस्वामी से मिले, और बाद में सनातन गोस्वामी से। थोड़ा सा इसका पृष्ठ बार बताया जाएगा पीछे। ये दोनों भाई सरस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, रूप और सनातन के पूर्वज, वो ऊंचे ब्राह्मण राजा के रूप में निवास कर रहे थे, लेकिन क्यों कुछ स्थिति के कारण वो जाकर बंगाल में रहने लगे, और फिर कुछ समय उड़ीसा, कुमार देव के तीन पुत्र थे जो कि परम महान थे, रूप सनातन और अनुप श्री वल्लभ। ऐसा बताया गया कि सनातन गोस्वामी, उनको एक दिन एक स्वप्न आया, एक ब्राह्मण जो है उनके पास आकर श्रीमद् भागवतम दिया, सनातन गोस्वामी इतने आसक्त हो गए। जब वो उठे तो वो इच्छा कर रहे थे कब श्रीमद् भागवत प्राप्त होगा, इच्छा कर रहे। उन दिनों में उतना आसान नहीं था श्रीमद् भागवत प्राप्त करना, उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थे। आज आप किसी बुक स्टॉल में जाकर और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको पसंद आए या नहीं आए, एयरपोर्ट पे कोई भक्त आके दे। लेकिन उस समय अगर आपको श्रीमद् भागवतम चाहिए, आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जो कि एक लिखने वाला हो और मूल कॉपी दिखे, और वो हाथ से जो है कॉपी बनाए, बहुत बहुत दुर्लभ है। वही ब्राह्मण जो स्वप्न में आया था सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे और वो उनको श्रीमद् भागवत प्रस्तुत किया, वो उनका सर्वस्व बन गए। रूप और सनातन ऐसे प्रेममय सज्जन सच्चे वैष्णव थे, इतने ज्यादा अच्छे शास्त्र के जानकार थे, उनसे सभी लोग प्रेम करते थे। मुगल राजा जो है बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह, किसी न किसी तरीके से उनको प्रेरणा दी, उनको अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस समय मेजोरिटी हिंदू थी और अगर वो रूप सनातन को मंत्री बनाते तो उनके लिए सबका सपोर्ट योगदान प्राप्त करना आसान हो जाता। और उन्होंने इतना अच्छा किया, लेकिन कि राजा ने वास्तव में उनको अपने भाई के रूप में मानते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को उनके साथ विभाजित किया, उन्होंने बहुत सुंदर महल बनाए, बहुत सारी जमीन प्रदान की, उनके लिए बहुत सुंदर सरोवर बनाए, बहुत बड़े खजाने अर्पण किए। लेकिन रूप और सनातन कुछ नहीं चाहते। उन्होंने मदन मोहन का विग्रह बनाया राम के लिए में, और वृंदावन के विग्रह में उन्होंने वृंदावन के बगीचे बनाए, राधा कुंड और श्याम कुंड के जल बनाए, कृष्ण की लीला पर ध्यान करते हैं, राजा जाके दूसरे देश को जीत रहे, वह पूरे राज्य का ख्याल रख रहे थे। सनातन गोस्वामी को स्वप्न प्राप्त हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु का सपना जो उनके सामने प्रकट हुए, सनातन गोस्वामी समझ गए कि वही स्वयं कृष्ण है। उसके बारे में रूप गोस्वामी को बताया, रूप गोस्वामी ने स्वीकार किया कि किसी न किसी तरीके से हमको इस सरकारी की पोस्ट से बाहर निकलना होगा। कुमार देव जो उनके पिता थे वो विशेष पूजा कर रहे थे बार बार, अपने बच्चों को उनको भौतिक शक्ति से मुक्त करने के लिए, से वो कृष्ण की पूजा कर सकें सीधे अपने प्राण के रूप में। रूप और सनातन की माता अपने उन्होंने से कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखो कि कैसे निकल सकें। उन्होंने एक के बाद अनेक पत्र लिखे लेकिन उनको कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ। अंत में उनको एक उत्तर मिला, और वो उत्तर ऐसा था कि जिसका अर्थ समझना मुश्किल था। महाप्रभु ने लिखा, अगर एक स्त्री एक प्रेमी अपने पति के अलावा किससे प्रेम करती है तो अपने पति की सेवा इतने अच्छी तरीके से करती है लेकिन अपने प्रेमी के बारे में सोचती रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम, इसका मतलब शब्दार्थ के रूप में, मूल शब्दार्थ के रूप में नहीं लेना इसका, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोपियों के प्रेम के बारे में बात कर रहे थे और वो समझ गए। हमें अपने सारे कर्तव्य को इतने अच्छी तरीके से करने, लेकिन हमेशा कृष्ण के ऊपर ध्यान करने। भगवान बोले कि कृष्ण की कृपा के लिए इंतजार करो आपका उद्धार करने के। तो पहला प्रयास जो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए था, वो रामकेले की ओर से होते हुए गए, जहाँ पर ऊपर सनातन निवास कर रहे थे। उस समय नवाब हुसैन शाह ने उनको बहुत आदर प्रकट किया, उनको टाइटल दिया गया था उनको नाम दिए गए थे साकार मलिक और दबीर खास। श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेले में आए, चैतन्य भागवत के अनुसार लाखों करोड़ों लोगों के साथ आए, वे सब हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। ये बड़ा विशिष्ट, बड़ा खतरनाक था, क्योंकि राजा ने ऐसा नियम बनाया था कि कोई भी अपने धर्म के अलावा किसी का पालन करना नहीं अलाउ करता। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु सड़कों पर नृत्य कर रहे थे, यहाँ पर राजा रहते थे और उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सब जगह पे जो है हरि नाम फैल रहा था, लाखों करोड़ों लोग आकर्षित होने लगे। और एक पुलिस ऑफिसर जो नवाब हुसैन शाह के पास गए, मैं आपको समझा नहीं सकता कि क्या मैंने देखा, ये सन्यासी वो नौजवान है और बहुत सुंदर भी है, मैंने उसकी तरह किसी को देखा ही नहीं। उनका वर्ण जो है सोने के समान चमक रहे, उनकी आंखें जो हैं कमल की आंखों के समान, कानों तक फैलने वाली नेत्र हैं, वो आंसुओं की नदी बह रहे हैं, उनकी भुजाएं जो हैं वो घुटनों से नीचे तक फैल रही हैं, उनका नासिका जो है वो सुंदर सुतमी फूल की तरह है। जैसे वो नृत्य कर रहे हैं, वो हरी बोल जोर से पुकार रहे, लाखों करोड़ लोग हैं वो बिल्कुल नशे में चूर्ण है, वो अपना जीवन अर्पण, शरीर मन शब्द सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, जो भी वो चाहे उनको करने के लिए तैयार। हर एक व्यक्ति जो है प्रेम में सब रो रहे हैं, जैसे वो कृष्ण नाम पुकार रहे हैं। उनका शरीर जो है मक्खन की तरह नरम है और वो ऊपर छलांग लगाते हैं, जमीन पर गिरते हैं, वो पत्थर तोड़ देते, लेकिन वो घायल नहीं होते, उनके शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं, उनके अंग कांप रहे हैं। वो पुले रामकेले को बाहर में ले जाए, वो ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर जादू कर रहे हैं। मैं बहुत सारे साधु और सन्यासी और बाबा और स्वामी को देखे और मुल्लाओं को देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर इतना प्रेम, इतना प्रभाव हो, जैसे उनके समान किसी को नहीं देखा। नवाब हुसैन शाह ने केशव खान को बुलाया, जो कि उनके एक मंत्री थे। केशव खान भक्त थे, उन राजा से पूछा क्या आप स्वामी के बारे में जानते हैं जो हमारे नगर में आया है? अगर मैं सत्य बताऊंगा और हिंसक भी हो सकते हैं, ये सब अतिशयोक्ति है। ये सब घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे। नवाब हुसैन शाह बोले, क्यों बोल रहे हो आप? बोल रहे थे गंभीरता से नहीं लेना। मैं लोगों को बहुत सारी तनख्वाह देता हूँ कुछ कार्य करने के लिए करने, और फिर भी वो करते नहीं है। और ये सन्यासी जो है किसी को कुछ भी पैसे नहीं पड़ते, और उनके लाखों करोड़ों लोग उनके जा रहे, अपना पूरा जीवन अर्पण कर, पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं। मैंने उनके भाव प्रेम का देखा है, उनके प्रेम समाधि को देखा, वो सबको प्रेम कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। कुरान में जिसको अल्लाह कहा गया है, जिसको वेदों में कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, वो स्वयं भगवान जो है परम सत्य और भगवान, वो यहाँ पर मेरे राज्य में आए हैं। वो भगवान का प्रेम सबको बांटने के लिए, और उसको साधारण व्यक्ति बोल रहे, भिखारी बोल रहे, ये अपराध है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये एक नियम बनाया जाए, ये स्वामी जो है चैतन्य है, जो जैसे प्रचार करना चाहे, जिस तरीके से, किसी भी तरीके से चाहे उनको प्रचार करने दो, और उनको सबको तो चाहे तो प्रेरित करे जोर से गाने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति उसको रोकने का प्रयास किया तो मैं उसका सजा दूंगा और उसको मार भी डालूंगा। जाओ घोषणा कर दो केशव खान ने प्रणाम किया नवाब को, और फिर नवाब हुसैन शाह उन्होंने दबीर खास से साकार मलिक को बुलाया, उनसे पूछा आप इस सन्यासी को जानते हैं? और रूप और सनातन ने जवाब दिया जो सब कुछ है उसके मालिक वही हैं, वो पूरे सब भगवान के स्वामी, जो भी आपके पास है वो उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आप राजा हो, और राजा का मतलब है भगवान का प्रतिनिधि होना, इसलिए मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको ये बातें पता होनी चाहिए। और नवाब हुसैन शाह ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि वो भगवान है। उन्होंने संदेश भेजा क्योंकि वो जानते थे, उसने चैतन्य महाप्रभु की अच्छी चीजें सुनी हैं, लेकिन अगर वो गलत चीज सुनेगा, नवाब हुसैन शाह ने इतना शक्तिशाली, इतना क्रूर था वो, उसका मन इतना अस्थिर था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संदेश भेजा कि राम के लिए छोड़कर चले जाओ, कीर्तन के बीच में थे, और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में नाम कीर्तन कर रहे होते, वो पूर्ण मग्न रहते नाम। राधा भाव द्युति सुविलिता नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो राधा रानी के प्रेम भाव को नाम को पुकारने, और जैसे वो नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, लाखों लोग उनके आसपास थे, सब ऊंचे स्वर में कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, कुछ ब्राह्मण उनको संदेश देने के लिए खड़े हुए थे, वो घंटों घंटों खड़े रहे। वो चैतन्य महाप्रभु के पास, उनके पार्षद के पास बोले कि बहुत खतरनाक है, ये राजा जो है बहुत ईर्ष्यालु है, कीर्तन को बंद करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और पार्षद जो वेट कर रहे थे, पहले संदेश बार एक दिन खड़े रहे चैतन्य महाप्रभु, वो कीर्तन में बात नहीं करते थे और कोई भी चीज उनके ध्यान को एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकते नाम से। अंत में उन्होंने एक उनका पार्षदों को बताया, एक संदेश चाहिए, इमरजेंसी मैसेज, और कई दिन बीत गए और चैतन्य महाप्रभु वो गा रहे थे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
में श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा ये कुछ लोग हैं जो जरा चिंता में हैं। उन्होंने कीर्तन को रोका और उन्हें पुकारा बुलाया, दया और भाव से बोले, मैं यह प्रकट हुआ इस दुनिया में सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, किसी को डरने की क्या बात है। नवाब या जो भी शक्तिशाली व्यक्ति है, अगर मैं उनको बोलने की शक्ति नहीं दूंगा तो वो मेरे को एक शब्द भी नहीं बोल सकता। अगर मैं उनको बोलने की चलने की शक्ति नहीं तो नहीं चल सकता, डरने की क्या बात। और वो श्लोक चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में, पृथ्वी के हर देश और नगर में पूरे मेरा नाम गाया जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ ही पार्षदों के साथ एक कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष और उस पेड़ के परिवार के दूसरे पेड़ अभी भी हैं, रात्रि के समय दबीर खास और साकार मलिक श्री वल्लभ के साथ उन्होंने साधारण वस्त्र गए, छिप कर गए गौरंग महापुरुष से मिलने, और श्री वल्लभ के छोटे पुत्र जीव गोस्वामी वो पीछे पीछे उनके चल पड़े। वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के पास गए भगवान नित्यानंद हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास ले वो बिल्कुल नम्रता के कारण अपने दांतों के बीच में तिनका रखा और गले में कपड़ा डाला और दंडवत प्रणाम किया। उस जमाने में ये एक स्थिति, अपने आप को पूर्ण नम्र बनाने की स्थिति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने प्रणाम करना। वो रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु को अपने ऊपर उठा, उठने को भी तैयार नहीं थे, अपने हाथ जोड़कर उन्होंने अपने हृदय से प्रार्थना अर्पण की, उनकी स्तुति करने लगे भगवान के रूप में जो कि सबसे पतितों का उद्धार करने के लिए आए। और सार में वो कहने लगे कि अगर आप हमारे से बढ़कर पतित कोई नहीं है, हमारे कार्य बहुत अधम है, हमारा साथी भी बहुत अधम, हम स्वयं भी बहुत पतित हैं, आपने जगाई और मधाई का उद्धार किया, लेकिन आपके लिए वो पूछा नहीं, क्योंकि जगाई मधाई तो ब्राह्मण परिवार से नवद्वीप से थे और उन्होंने कभी ऐसी सेवा नहीं की, मिलेच्छर यवनों की नौकरी नहीं की, हम लाखों लाखों समय जो हैं जगाई और मधाई से ज़्यादा पतित है। आप पति तो पावन हो, सबसे गिरे हुए को उद्धार करने वाले, आप हमें आपकी महिमा जो है इस नाम के लिए वो पूर्ण तब होगी जब आप हमारे ऊपर कृपा दिखाओगे। हम इसके योग्य नहीं, हम कृपा के मांगने के भी योग्य नहीं हैं, लेकिन हम बौने की तरह हैं, जैसे कि चंद्रमा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी चेतना है। लेकिन फिर भी हमारे और कोई आशा ही नहीं है। वो रो रहे थे, कृपा मांग रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में गिरे, चैतन्य महाप्रभु उनको ऊपर उठाया, उनको गले लगाया, भगवान बोले ये जान लो तुम मेरे पुराने मित्र हो, ऐसे बोलने का प्रयास मत, मतलब आपकी नम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को नाम दिया रूपा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वो उनके चरण कमल पर गिर पड़े, उनके चरण सिर के ऊपर, और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने अश्रुओं से उनके शरीर को स्नान करवाया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, राम के लिए में रहना खतरे से खाली नहीं है, और उनको बताया कि लाखों लाखों लोगों के साथ वृंदावन जाना वो तो एक तकलीफ पैदा करेगा, आप अकेले जाना, या अकेले जाओ या फिर एक निकट पार्षदों को साथ ले जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे कहा, मैं राम के लिए मैं आया था, बस आप तीनों से मिलने आया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उनको इशारा किया, अपने सरकारी नौकरी त्याग दो और वृंदावन जाओ। उसके बाद भगवान कन्हैया नटशाला से फिर वापस पूरी चले गए और अपने सारे पार्षदों को बताने लगे, ये रूप और सनातन के पास इतना ज्ञान है, इतनी संपत्ति है, इतनी शक्ति है, लेकिन वो कितने नम्र हैं, इतने प्रामाणिक हैं, समर्पित जीव हैं। मैंने अपनी पूरी कृपा उनके ऊपर प्रदान कर दी है। रूप गोस्वामी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपनी संपत्ति को बांट दिया, आधा ब्राह्मणों और वैष्णवों को बांट दिया, 25% परिवार के लिए, 25% स्वयं के इमरजेंसी के लिए रखा। लेकिन सनातन गोस्वामी जा नहीं सके, वो सरकार के प्रधानमंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद नवाब हुसैन शाह ने देखा सनातन गोस्वामी नहीं आ रही, सनातन गोस्वामी ने संदेश भेजा कि मैं बहुत बीमार हूँ। वो बीमार थे, वो बीमार थे राजा की सेवा करने से। उन्होंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया श्रीमद् भागवत पे चर्चा करने के लिए, कई दिनों तक पूरा राज्य उनके बिना, राज्य की जिम्मेदारी पूर्ण कुछ। नवाब हुसैन शाह ने एक डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत अच्छे चंगे हैं, फिर वहाँ क्या कर रहे हैं, पूरा दिन भर भागवत पढ़ रहे हैं, नवाब बहुत क्रोधित हो गए, वो भागवत क्लास के बीच में आ गए। नवाब हुसैन शाह कमरे में आए, बोले क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे, क्या जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे क्रू कार्य अच्छे करना अच्छा लगता है, मैं उड़ीसा जाना चाहता हूँ, जगह को ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है और आप यहाँ पर ये कर रहे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको जो करना है कर लो, मैं आपकी सरकार का भाग नहीं बनना चाहता। राजा ने उनको आज्ञा दी, उनको सजा दी जाए, उनको जेल में डाला जाए, और राजा चला गया। बहुत लंबी कहानी है, वो कैदी थे। दुनिया के तरीके ऐसे हैं, एक दिन व्यक्ति करोड़पति होता है, बड़े बड़े महलों में रह रहा होता है, और अगले दिन वो जेल में हो रहा है। अगर आप रामकेले में जाओगे तो प्रसन्न जेल को देख सकते, जिसमें सनातन गोस्वामी रहे थे, वो जमीन के अंदर बहुत ही भयानक जगह थी, लेकिन किसी तरीके से अपनी होशियारी से सनातन गोस्वामी ने जेल कीपर को बताया कि मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, रूप गोस्वामी ने उनके लिए भेजे थे, मैं आपको ये सोने के सिक्के दूंगा, बस मेरे को आपको जेल से मुक्त कर दो। और वो कैदी बोला, लेकिन राजा, अगर मैं आपको मुक्त करूँ तो राजा क्या कहेगा, तो बताया कि मैं मक्का जाना चाहता, मक्का तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता, और धर्म के अनुसार अगर तुम दूसरों को मदद करते हो तीर्थ यात्रा में, तो आपको बहुत बहुत सारे भगवान के आशीर्वाद मिलेगा, और इतने साधु पुरुष हो और भगवान से इतना प्रेम करते हो और आप ये करना चाहते हो। वो बोले, हाँ मैं साधु पुरुष, मुझे भगवान का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन राजा मुझे सजा देंगे। सनातन बोले, उनको बोलना कि मैं गंगा के किनारे गया, शौच क्रिया करने के लिए गया, और अपने मैं चैन के साथ गंगा जी में गिर पड़ा और अंदर डूब गया, और बहुत खोजने के बाद मिल नहीं पाए, और आप मेरे को देखोगे नहीं, मैं निकल जाऊंगा, और एक्स्ट्रा सोने के सिक्के दिए। उन्होंने सनातन गोस्वामी को मुक्त कर दिया, और अंततः बहुत सारे तकलीफों के बाद वाराणसी पहुंचे, और उनको पता चला कि चेतना महापुरुष में चंद्रशेखर के घर में थे, और वो आंगन में बैठे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बोला, देखो कि एक बाहर साधु हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनको अंदर लेकर आओ। और वो बाहर गए और बोले, कोई बाहर संत नहीं है कोई, तो बोले कोई तो है, बोले कई बहुत ही गंदा दिखने बद्ध एक कोई साधु दिख रहा है बहुत, बोले वही है, उनको ले आओ। चैतन्य उनका स्वागत करने आए, ने सनातन को गले लगाया, उनके उनके आंखों में आंसू आने लगे, प्रेम के आंसू। बहुत लंबी कथा है कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश किया, हर रोज 2 महीने के लिए ज्ञान प्रदान किया कृष्ण भावना के विज्ञान के बारे में, और फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी को आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाओ, कुछ समय के लिए रहो, और फिर मेरे को जगन्नाथपुरी में आकर मिलना आप। मेरे पास चार विशेष उद्देश्य हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम और रूप गोस्वामी करें। एक है कि सारे जो तीर्थ स्थान है कृष्ण की लीलाओं को उनको फिर से खोजना और वृंदावन धाम को तीर्थ स्थान पे के रूप में स्थापना करना, जिससे कि आध्यात्मिक जागृति हो सके, जिससे लोगों को आश्रय मिल सके। मंदिरों की स्थापना करना और जो विग्रह जो खो गए हैं उनको वापस खोज के निकालना। अपने स्वयं के उदाहरण से लोगों को दिखाना कि कैसे वैराग्य के भाव से कैसे रहना, भक्ति के भावना से, और सारे वैदिक शास्त्रों के सार को और स्थापना कर परम श्रेष्ठता शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करना, जो कि ब्रजवासियों के पदचिन्हों में चलते जीवन की पूर्णता के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 8 श्लोक लिखे शिक्षाष्टकम के, लेकिन उन्होंने षट गोस्वामी को उनके अनुयायियों को शक्ति प्रदान की, जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ली उनको और ज्यादा बढ़ाएं, पूरे दुनिया में प्रचार कर। सनातन गोस्वामी वृंदावन लौट कर आए सुबुद्धि राय से मिल, जो महान भक्त थे, जो एक समय बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, वो चैतन्य प्रभु की प्रेरणा से आए, उनकी सब कुछ था सेवा करना। वो सनातन गोस्वामी को सारे 12 वनों में ले गए, सनातन गोस्वामी पूरी लौट कर आए, चैतन्य प्रभु के साथ 1 साल रहे और फिर उनको वापस भेज दिया गया वृंदावन की ओर। जब श्री अद्वैताचार्य वृंदावन में रह रहे थे एक यहाँ से अदूर ने अद्वैत वट के पास जब वो गए, उनको मदन मोहन के विग्रह, उनको मदन गोपाल भी कहते थे, उनको वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विग्रह की सेवा की और उसके बाद उन्होंने विग्रह की सेवा एक ब्राह्मण को दी, मथुरा में ब्रजवासी थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे रह रहे थे, जब वो एक बार महावन में थे और फिर उन्होंने दूर से बहुत सुंदर एक बालक को देखा, एक छोटे बालक की तरह खेल रहा था। सनातन गोस्वामी इस बालक के प्रति आकर्षित, पूरा दिन बीत गया, और वो बालक घर की ओर निकल पड़ा। सनातन साथ के पीछे पीछे गए और वो बालक जब मंदिर में आके और जब सनातन से मंदिर में गए और देखा कि बालक ने अब विग्रह बन गए। सनातन को समझ के ये बालक कृष्ण है और मदन गोपाल उनकी पूजा मथुरा में की गई। मधुकरी कहते वो इस जगह पर पहुंचे, उनको अंदर बुलाया गया ब्राह्मण बोले मैं आपको कुछ रोटी देना चाहता। सनातन गोस्वामी ने कुछ बड़ा अजीब देखा कि ये ब्राह्मण जो है वो विग्रह को डांट रहे थे। मैंने आपको सब भूखे खा क्यों नहीं रहे हो, डांटने लगे लकड़ी लेकर है। अगर आप जो मैं दे रहा हूँ खाओगे नहीं तो कैसे तुम पुष्टि प्राप्त करोगे। सनातन गोस्वामी देख रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि कृष्ण भगवान है कृष्ण की विग्रह की पूजा इस तरीके से नहीं करना चाहिए। फिर अपने आप को रोक दिया, ब्राह्मण ने अपने आप को सुधार लिया। फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन द्वादश आदित्य टील वापस लौट कर आए यमुना नदी के ऊपर पर्वत। फिर कृष्ण सनातन गोस्वामी को प्रकट और वास्तव में कहा कि ये ब्राह्मण जो वात्सल्य रस में है वो मेरा शुद्ध भक्त है, लेकिन अब मैं उनको सपने में आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरी सेवा करें। सनातन गोस्वामी बोले भगवान मेरा कोई घर नहीं, मेरे पास भोजन भी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपकी पूजा कैसे करूंगा। भगवान हमारे से प्रेम चाहते हैं। मदन गोपाल प्रकट हुआ, ब्राह्मण को प्रकट हुआ, बोले कि मेरे विग्रह को सौंप दो सनातन गोस्वामी को, और जो उन्होंने कर दिया। और वो यहाँ वृंदावन में द्वादश तिलक पर सनातन गोस्वामी मदन मोहन की पूजा कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे निवास कर रहे थे। वो कुछ मधुकरी करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कुछ ब्रिजवासी जो है कुछ उसको आटा देते, कुछ आटा देते थे और उसमें यमुना का जल मिक्स करके और वो गोल बनाकर उसको गर्म उसका जला हुआ भाग निकाल के उसको वो भगवान को बाटी अर्पण करते। और एक दिन कृष्ण ने उनसे पूछा, ये तो बहुत सरल है, बहुत सादा है, कम से कम नमक तो दे दो साथ में। सनातन बोले मेरे पास सब यही है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यम भक्त्या प्रेषयति। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अगर मुझे कुछ पत्ता जो फूल जो भी फल देते, पानी भी अगर अर्पण करते, अगर भक्ति से किया गया तो मैं स्वीकार करता हूँ। न केवल कृष्ण स्वीकार करते, कृष्ण जीत लिए जाते हैं। एक अगर एक पत्ता भी प्रेम से अर्पण किया गया तो भगवान जीत लिए जाते हैं। जब बंगाल से पूरी से भक्त आते, जब वृंदावन में आते, जब वो लौट कर आते, लोग उनसे पूछते कि रूप और सनातन कैसे हैं, और वो बोलते कि आप पूछ रहे हैं कैसे वो व्यवहार, उन्होंने सबको त्याग दिया। जो सब लोग चाहते हैं वो संपत्ति को उन्होंने त्याग दिया, और अब वो जमीन पर लेटते हैं सब पांचों ऋतुओं में, अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते हैं, उनके कपड़े जो हैं ब्रजवासियों के फटे हुए कपड़े, वो कोपिन बना, बस चादर सर्दी के मौसम। यहाँ तक भोजन का सवाल, सिर्फ रोटी के रूप में उनको सभी कभी कुछ चना मिल जाता है। यहाँ तक सोने का सवाल है, दिन रात में दो बस होते, उनके पास समय ही नहीं होता। वो हमेशा कीर्तन में हरि नाम कर और नित्य कर रहे हैं, कृष्ण कथा एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते, दिव्य पुस्तक लिखने में मग्न है, पूरे दुनिया को कृष्ण ज्ञान देने के लिए। वो सबसे ऊंचे प्रेम में मग्न रहते, जैसे ऐसे वो छह गोस्वामी रहते हैं। एक दिन सनातन गोस्वामी जब वहां पर थे, एक व्यापारी नौका पे सवार, जो बहुत सारे संपत्ति और नमक लेकर जा रहा था, उसकी नौका नदी में फंस गई, यमुना की मिट्टी में फंस गई। कृपया समझो कि उस दिनों में ये बिल्कुल पूरा जंगल था, यहाँ पर शेर और चीते रहते थे, और ये जंगल के बीच में अब नौका फंस गए, जाने का कोई तरीका ही नहीं था, एक बड़ा विडम्बना स्थिति हो गई। मदन गोपाल एक छोटे विग्रह स्वयं, जो कि कृष्ण है स्वयं, वो जो चाहे कर सकते हैं, तो वो एक छोटे बालक का रूप धारण करके नीचे के पास गए, और कृष्णदास कपूर के पास गए। वो इतने तकलीफ में थे, दुख में थे, और वो बालक बोलने लगे कि यहाँ पर एक संत रहते हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास जाओ, वो आपको बुद्धि दे सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, और कृपया मुझे थोड़ा नमक दे दो। अब थोड़ा नमक कृष्ण को दो, कृष्ण सब कुछ दे देते हैं अगर प्रेम से अर्पण किया जाए। और वो गए और सनातन का संग करने से उनको इतना अच्छा लगा। सनातन गोस्वामी उनके पास शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में उपदेश किया, जैसे वाराणसी में किया था। जो सनातन गोस्वामी बड़ी नम्रता के साथ बोलने लगे, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, सब कुछ मदन मोहन का आश्रय लो, उनके नामों का कीर्तन करो, ये सच्ची संपत्ति है। उन्होंने मदन मोहन को पूरा जीवन अर्पण किया, सनातन गोस्वामी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, और उनकी नौका मुक्त हो गई। वो आगरा के इलाके में गए, सब कुछ बेच दिया, वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, वो सनातन गोस्वामी के पास आए, सब कुछ सौंप दिया सनातन को। सनातन गोस्वामी सब कुछ दुनिया की संपत्ति को त्याग दिया था, बोले कि मेरे पास वृंदावन के भूमि में लेटने से, कल्पवृक्ष के नीचे लेटने से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है, लेकिन मदन मोहन के लिए मंदिर बना दिया, तो आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनके लिए मंदिर बनाओ, और वृंदावन का एक मुख्य लक्षण आज भी 500 साल बाद भी है, जो पहला प्रमुख मंदिर जो वृंदावन इलाके का है वो श्री मदन मोहन मंदिर है। सनातन गोस्वामी आगे बढ़े, विग्रह की पूजा कर रहे, अलग अलग लोग उनको मदद करते, वृंदावन में भ्रमण करते, कभी कभी वो पावन सरोवर में निवास करते नंदग्राम के पास में, कभी कभी मानसी गंगा के पास रहते हैं, जहाँ पर चकलेश्वर महादेव निवास करते वज्रनाथ के द्वारा स्थापित। सनातन गोस्वामी से सभी प्रेम करते, क्योंकि वे सबसे प्रेम करते, वो इस तरह से लोगों से बातचीत करते कि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो। एक कोने से दूसरे कोने भ्रमण करते वृंदावन में, जब वो किसी गांव में पहुंचते तो गांव के लोग सब उनका स्वागत करते स्नेह के अश्रुओं के साथ, और छोटे बच्चे उनको पिता के समान मानते, और एक ही उम्र के लोग उनको भाई मानते, सब उनको अपने गुरु के रूप में मानते। आप कितने समय अलग रहे हैं हमारे घर में, कहते हैं कि कैसे आपके अनाज कैसे हैं, आपकी बेटी का विवाह हो गया है, आपका संपत्ति कैसे है, आपकी गाय कैसे हैं, खेती कैसे, कितने बछड़े हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चीज पूछते हैं, और इस तरह उनसे घनिष्ठता से व्यवहार कर, इस तरह वो सबके हृदय को जीत ले। और उन संबंध का स्थापित करने के बाद सबको इतना अच्छा लगता है, और कई घंटे बिताते कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे और नाम संकीर्तन करते रहे, इतने गहराई से हृदय को चाहिए जो भी वो बोलते हैं उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करते, ये उनके प्रचार का तरीका था, सबके प्रेम को जीत लेते, अपने प्रेम से जीत और कृष्ण से भर देते। वो विरह सहन नहीं कर सकते और फिर दूसरे गांव में पहुंचे और वो भी रोते रहते हैं, और इस तरीके से सैकड़ों वृंदावन के गांवों में भ्रमण कर रहे थे। बहुत एक मशहूर कहानी कि चकलेश्वर महादेव के पास वो लिख रहे थे, गोवर्धन के पास वो छोटा सा दिया जलाते हैं कुछ पत्तियों के साथ, वो अपनी किताबें लिखते थे। उस समय किताबें लिखना कितना अच्छा अनुभव था, उसमें वर्ड प्रोसेसर नहीं थे और कंप्यूटर नहीं थे, डिक्टाफोन मशीन टाइपराइटर नहीं थे, पेपर पेन पेंसिल कुछ भी नहीं था। वो पत्तियों को लेते, पत्तियों को इस तरीके से लिखा जाता है कि उनको हर एक संस्कृत अक्षर इतने अच्छे तरीके से लिखते, और फिर इंक लेकर आते हैं। उनको मच्छर काट रहे थे, वो सोच रहे थे ये पूरी रात सेवा करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने निश्चय किया अगले दिन मैं छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा अपनी सेवा को करने के लिए। अगले दिन सवेरे भगवान शंकर जी ने चकलेश्वर महादेव, वो सनातन से विरह सहन नहीं कर सके, वो एक ब्राह्मण के रूप में आए और बोले आप क्यों छोड़कर जा रहे हो स्वामी जी। उन्होंने कारण बताया तो बोले कि बस एक रात्रि और रहो, अगर मच्छर आएंगे तो फिर जाना। सनातन गोस्वामी ये प्रश्न को मना नहीं कर सके और भगवान शंकर जो महादेव हैं, उन्होंने देवता जो मच्छरों के इंचार्ज जो देवता हैं को बुलाया, उनको आज्ञा दी कि किसी मच्छर को वहाँ पे, अब किसी भी कीड़े को वहाँ मत जाने दो, सनातन गोस्वामी को डिस्टर्ब नहीं करें। और उस दिन से एक भी मच्छर उनको कोई तकलीफ नहीं दी। एक दिन रूप गोस्वामी, एक बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए कुछ खीर बनाना चाहते थे और एक बहुत एक सुंदर स्त्री जो है अच्छा चावल और दूध और शक्कर, वृंदावन का शक्कर लेकर आए और कुछ मसाले, बोले कि आप एक खीर बनाओ अपने भाई सनातन के लिए, खीर बनाओ। और वो उसने स्वयं बनाए और रूप गोस्वामी सनातन को लेकर आए और सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी खाने लगे, जैसे उन्होंने टेस्ट किया उनके अंदर एक भाव विवल होकर वो कांपने लगे। सनातन गोस्वामी ने कहाँ से लेकर आए पूछे, तो रूप गोस्वामी ने बताया एक सुंदर लड़की ने दिया मुझे, तो फिर इसका वर्णन तो करो। जब वो वर्णन कर रहे थे रूप और सनातन को पता चला उनके शाश्वत श्रीमती राधा रानी वो यहाँ पर आए थे उनके लिए प्रसाद बनाने के। और ये कहानी से पता चलता है कि भक्ति का सिद्धांत क्या है? सनातन गोस्वामी बहुत दुखी थे, वो बोले रूप गोस्वामी कि रूप गोस्वामी हमारी रूप गोस्वामी कहने लगे कि राधा रानी हमारी सेवा करें, हमें तो उनके दासों के दास बनना चाहिए राधा रानी का, आपने ऐसा क्यों किया, उनकी सेवा को क्यों स्वीकार किया? थोड़े लज्जित भी थे लेकिन वो खाना बंद नहीं कर सके खीर का, क्योंकि इतनी टेस्टी थी। आज दुनिया में बहुत से लोग भगवान की पूजा करते हैं इसलिए भगवान को अपना आज्ञाकारी मानकर, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वास्तव में क्या चेतना होनी चाहिए व्यक्ति की, वृंदावन की चेतना क्या होनी, शुद्ध भक्ति। सिर्फ ये विष्णु को प्रसन्नता देना, बदले में कुछ आशा नहीं करना, सिर्फ किसी सेवा के अवसर के तैयार कर प्रयास करना। और जब हमारी ये भावना होती है तो कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, जब पूर्ण रूप से जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब सनातन गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए वो परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज की, सुनाई पड़े वो चंद्र सरोवर सब स्थानों में जा रहे थे, और एक ग्वाला आया जो स्वयं कृष्ण थे, वो वेश बदल के कृष्ण आए थे और सनातन गोस्वामी को कहने लगे क्यों अपने बुढ़ापे में क्यों इतना कष्ट ले रहे हो ये परिक्रमा करने के लिए। सनातन गोस्वामी बोले कि मेरी सेवा है कृष्ण के प्रति, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है। वो आगे कहने लगा, अपनी मुरली बजाई गोवर्धन पर और उसमें से एक शिला में से पिघल गई और भगवान उस शिला को लेकर और बोले ये इनके चरण कमल, ये बछड़े के निशान कृष्ण के निशान और उनके उनके छड़ी के भी निशान है, इसी की परिक्रमा करो, चार बार परिक्रमा करो, रोज परिक्रमा करो और वो पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने के बराबर होगा। और वो बालक व्यक्तिगत रूप से शिला को लेकर सनातन गोस्वामी के पास भजन कुटी तक लेकर गए। और वो बालक अप्रकट होने के बाद सनातन गोस्वामी को पता चला कि स्वयं कृष्ण थे, उन्होंने मुझे ये आज्ञा प्रदान की है। जब श्री सनातन गोस्वामी जब वो दुनिया को छोड़कर कृष्ण को ले गए तो हर एक वृंदावन हर एक ब्रजवासी पूरा जो भूमि जो है सब उनको अपना उनके अपने उनके प्रति अपना आदर प्रकट करने है, क्योंकि उनके परम मित्र थे और उनके गुरु भी थे। सनातन गोस्वामी के आदर देने के लिए विरह के आंसुओं से उन्होंने परिक्रमा की और उनके तिरुभाव देवस पे जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं आज भी देखा जाता है ब्रजवासियों में, परंपरा है सबसे बड़ा भीड़ पूरे साल में उधर ही होती है गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। और ये स्थापित किया गया सनातन गोस्वामी की दया को प्रकट करने। मदन मोहन मंदिर ये संबंध ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें तीन की भक्ति का जो वैदिक सिद्धांतों का जो सार है वो संबंध अभिधेय और प्रयोजन में समझा जा सकता है। संबंध का मतलब है कि भगवान के साथ कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापना करना, ये जानना कि मैं कौन हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने सनातन गोस्वामी की शुरुआत में शिक्षा में बताया, वाराणसी में समझाया है ये सिद्धांत से। जीवर स्वरूप है कृष्ण रनित्य दास, हम ये शरीर नहीं है, हम शाश्वत आत्मा है जो सच्चिदानंद है, जो शाश्वत है ज्ञान से पूर्ण और आनंद से पूर्ण। हमें वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम कृष्ण के ही अंश हैं। जैसे कि सूर्य की किरण जो है सूर्य के बराबर होती है, उसको अचिंत भेद भेद तत्व कहते हैं। गुण के रूप में देखा जाए कि हम कृष्ण से अलग नहीं हैं, लेकिन मात्रा में देखा जाए तो हम कृष्ण पूर्ण हैं, हम उनके छोटे से तुच्छ अंश हैं। कृष्ण परम भोक्ता हैं, कृष्ण सबके मालिक हैं, कृष्ण सबके ईश्वर हैं, और हम सब जो हैं शाश्वत रूप से दासों के दास। सबके हृदय में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो प्रेम को जागृत करना हृदय से, कृष्ण को समझना हमारे प्रेम के विषय के रूप में, सेवा के रूप में भक्ति की शुरुआत है। इस दुनिया में हम कृष्ण को भूल गए क्योंकि हम विचलित हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले अमेरिका में प्रोफेसर से बातचीत कर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर बातचीत करने के दौरान बोले, आज की दुनिया में ये समस्या है सबको जो है जीता जा रहा है विचलित करने के साधन के द्वारा, माया के, हम सबको बार बार जीत रहे, बार बार हमको विचलित कर रहे हैं। और क्या चीज हम विचलित करती है कि मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं मालिक हूं। हम प्रेम की तलाश में हैं, प्रेम की खोज में हैं, हम उसको खोज रहे हैं कुछ ही तुच्छ चीजों में, इंद्रियों के साधन, शरीर में कुछ रगड़ना, जीवा के पास, कानों में कुछ भौतिक बात, आंखों के सामने दृश्य प्रकट करना,
the pleasures of fame, prestige, control over others.
प्रसिद्धि दूसरों पे शक्ति प्राप्त करना, अगर हम आध्यात्मिक मार्ग को भी स्वीकार करते हैं, ये जो विच्छेदित करने वाली चीजें हैं, ये अंत नहीं होते, कभी कभी वो बढ़ भी जाते हैं। भक्ति के मार्ग पे जितने ज्यादा विच्छेदित है उतना ज्यादा हम समझते हैं, हमारे एकमात्र आश्रय हैं, वो है कृष्ण की कृपा। संबंध का अर्थ है एकमात्र आशय है इस दुनिया के सब विचलन को दूर करना, जो कामदेव के द्वारा किए जा रहे, और वो है परम दृष्टिवान निवर्तते। जिनको ज्यादा ऊंचा रस का अनुभव होता है, और ऊंचा रस है वो है कृष्ण की कृपा। पूरी दुनिया जो मदद देती, लेकिन मदन मोहित हो जाते हैं कृष्ण के द्वारा। जब हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं, जब कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं अपनी कृपा के द्वारा, तब हम दुनिया के खतरे से ऊपर उठ सकते हैं। अभिधेय का अर्थ है कि जब हम संबंध को स्थापित कर लेते हैं अपने सेवक के रूप में, तो हम समझ जाते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण का शरीर जो ब्रह्म की ज्योति है, तो भगवान के जो है प्रकाश निकल रहा है, कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, उनका शरीर जो है शाश्वत, वो सारी सुंदरता का स्रोत है, सारी मिठास का भी स्रोत है। और कृष्ण से प्रेम करना परम व्यक्ति के रूप में, हर एक आत्मा की वो सच्ची अभिलाषा है। भक्ति के विधियों में गहरन, बहुत गहरी आसक्ति के साथ, उसको अभिधेय कहते हैं। राधा गोविंद जो हैं, उनके विग्रह हैं, और रूप गोस्वामी उनके हमारे गुरु हैं उस मामले। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए मेरा प्लान था सब टेम्पल के बारे में बोलना, लेकिन मैं थोड़ी दूसरी चीजें बोलने लगा। मैं तेजी से करूँ जा रहे जब रूप गोस्वामी राम के लिए छोड़कर और उनके भाई अनुपम ने सारी संपत्ति को वितरित कर दिया, फिर जगन्नाथपुरी में एक संदेश भेजा, और फिर पूछा चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर हैं, और उनको संदेश मिला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। तो रूप गोस्वामी, रूप और अनुपम, वो वृंदावन की ओर चलना शुरू किए, और जब वे प्रयाग में पहुंचे जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, और उन्होंने देखा, कभी देखा नहीं तो ऐसे दृश्य देखा, जैसे ये तीन नदियां जो अनादि काल से रहे, जो एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन कभी प्रयाग में कभी भी बाढ़ नहीं आई। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के माघ के महीने में जब वृंदावन से वापस लौटे वो हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, लाखों लाखों लोग जो हैं भगवान का नाम पुकार रहे थे, पूरे प्रयाग प्रेम भक्ति से भरा हुआ था। भगवान चैतन्य प्रभु प्रयाग में वेणी माधव मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, अरूप सनातन रूप अनुपम। जब उन्होंने इसको देखा उनको दंडवत प्रणाम किया और वो दृश्य उन्होंने प्रार्थना बनाई, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिनी गौरतिशे नमः। कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में आए, जो कि स्वयं कृष्ण है, सारे अवतारों में उदार, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम ब्रजवासियों के भाव में सबको वितरित कर, कलयुग में सबको वितरित कर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने रूप गोस्वामी को आज्ञा दी, दशाश्वमेध घाट पर ज्ञान दिया करीब 10 दिन के लिए। उन्होंने शिक्षाओं की शुरुआत की बताने के लिए कैसे कि मानव शरीर कितना दुर्लभ है, 84 लाख योनि हैं, मानव शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मानव शरीर में भी अधिकांश जो हैं अपने जीवन को धार्मिक सिद्धांत के अनुसार नियमित नहीं करते, और अधिकांश व्यक्ति जो ऐसा करते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत इसलिए करते हैं कि उनको कुछ क्षणिक इंद्र तृप्ति मिल सके इस जीवन या अगले जीवन। कोई दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति को मिलना जब भगवान को दिव्य उद्देश्य के लिए जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसे करने वाले कई हैं जो निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहते हैं, ऐसा बड़ा दुर्लभ है जो कि सबसे अच्छी पूर्णता प्राप्त करना चाहे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर। जब एक मानव भ्रमण कर रहा होता है, आत्मा कई उन्हें भ्रमण कर रहा होता है, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि उसको कि उनको ऐसे सदगुरु के दर्शन, वो भक्ति लता के बीज हमारे हृदय में डालते हैं। वो बीज से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। भगवान चैतन्य प्रभु ठान लगे कि उस बीज को पानी डालने से, श्रवण कीर्तन करने से, 9 विधियों करने से वो बीज आगे बीज में बीज को पानी डालने से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी लताएं भी उगने लगती हैं। इसमें इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, मिथ्या अहंकार की इच्छाएं, दूसरों को घृणा करना, समय की बर्बादी करना, जब तक कि हम बड़े ध्यान से हमारी भक्ति लता बीज का वास्तविक क्या है। कई बार हम जो लता के आसपास जो घास फूस है उसी को पानी डाल देते हैं, इसलिए हमें भेद करना होता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक के लिए और भक्तों का संग दिया है, तो हम वास्तव में हम भेद कर सकें और जिस भक्ति के बीज को पानी डालते रहें। भक्ति के बीज को पानी डालना चाहिए और धीरे धीरे पानी डालने से वो बीज और उगने लगता है, वो स्वर्गलोक से परे चला जाता है। वो नदी के परे जाता है। वो और ऊपर उठ के अंत में सबसे ऊंचे लोक आध्यात्मिक दुनिया गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाते और फिर उस फल आई और वो फल जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में फल अर्पण हो जाए। और वो जो माली है वो उस फल का आस्वादन करेगा और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी को बताया कि अलग अलग ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव में किस तरह वो समझाया। भगवान का जो वैकुंठ में प्रेम है जो कि सीमित है कृष्ण के ऐश्वर्य से सीमित ब्रजवासियों का जो है प्रेम जब कृष्ण को जहाँ पर मित्र के रूप में प्रेम कर सकते कृष्ण को हमने बच्चे के रूप में प्रेम करते हैं वात्सल्य रस या कृष्ण को प्रेमी के रूप में प्रेम कर वृंदावन ये स्थान है सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्ति सारे अहंकार से मुक्ति जिससे हम इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण अपने अपने प्रेमी के रूप में और मित्र के रूप में स्वीकार करते। उन्होंने सारे सिद्धांत समझाए रूप गोस्वामी को और फिर उनको आज्ञा दी कि आप वृंदावन में जाओ और उसके ऊपर और ज्यादा विस्तार करो। वहां प्रभु फिर आगे वाराणसी में सनातन से मिलने वाले थे। रूप गोस्वामी उनके साथ जाना चाहते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले आप वृंदावन और फिर बाद में मेरे को आकर पुरी में मिलना। महाप्रभु नौका पर बैठे और रूप गोस्वामी जमीन पर बेहोश गिर पड़े और फिर रूप गोस्वामी वृंदावन में आए। सुबुद्धि राय उनको 12 वनों में ले गए और फिर वो पुरी गए लेकिन रूप और सनातन दोनों अलग अलग रास्ते से गए तो इसे दोनों मिल नहीं सके दूसरे को। पुरी में बहुत सुंदर रूप गोस्वामी के महिमा भगवान के द्वारा प्रकट किए गए। रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल वृक्ष के पास रहे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर उन्होंने वो कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य मानते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक रहने के लिए जगह दी जहाँ से चक्र के दर्शन कर सके और जगन्नाथ के उस चक्र के रूप में पूजा कर हर रोज चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है वो मंदिर से बाहर आते हैं, वो महाप्रसाद लेकर आते और अपने हाथों से हरिदास ठाकुर को अर्पण करते हैं, अपने हाथों से। और रूप सनातन भी वहीं पर रहते थे जब वो वहां पर पुरी में, उसी चैतन्य आप उनके साथ कई घंटे बैठा कृष्ण कथा कर प्रेम का आदान प्रदान कर। रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु को देखा, उनका सुंदर प्रेम राधा रानी के भाव कि राधा रानी कृष्ण को वापस वृंदावन ले जा रही, बहुत बहुत विरह के बाद में। और चैतन्य महाप्रभु कुछ एक जगत के सामने एक राधा रानी के भाव में एक श्लोक गा रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, वो बताते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि चैतन्य महाप्रभु के भाव क्या था। जब ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी के द्वारा जब कृष्ण से मिले कुरुक्षेत्र में मिले, बहुत बहुत वर्षों के बाद श्री राधा रानी कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आप एक राजकुमार के रूप में सजे हुए हो और आपके इर्द गिर्द सब सैनिक हैं और सुंदर हाथी भी हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको वापस वृंदावन लेकर आऊं, जहां पर आप साले सादे गुंजमाला धारण कर और गले में वनमाला धारण के और आपके बालों में सुंदर मोर का पंख, जब गायों से घिरे हुए कदम्ब वृक्ष से घिरे और सुंदर यमुना नदी। कृष्ण, आपको जो सुख वृंदावन मिल रहा है उसका एक अंश नहीं मिल, कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका सुख जो है मैं आपको आपके सुख के लिए वापस ले जाना चाहते हैं। वह चैतन्य महाप्रभु का भाव था। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे बता रहे थे कि दुनिया के दो प्रेमी के रूप में रूप गोस्वामी ने कॉमेंट्री लिखी और वो एक तालपत्र पर लिखा, हरिदास ठाकुर की कुटिया में रख दिया और वो समुद्र में स्नान करने गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु उस समय लौट कर आए, उसमें रूप गोस्वामी नहीं थे और चैतन्य महाप्रभु ने पति को देखा और वो पढ़ने लगे, वो आश्चर्यचकित हो गए। रूप गोस्वामी ने मेरे हृदय की बात को, मेरे बहुत ही गुह्य बात को, मेरे हृदय को उन्होंने समझ ली और वो स्वरूप दामोदर को दिखाने लगे और स्वरूप दामोदर वो बोले कि तभी संभव है कि आपने अपनी कृपा प्रदान किए रूप गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ, जब मैं उनको प्रयाग में मिला तब तो उनकी नम्रता, उनकी प्रामाणिकता, उनकी भक्ति को देख के मैंने उनको गले लगाया और उस गले लगाने के साथ में मैंने उनको शक्ति प्रदान किया हृदय में, जिससे कि पूर्ण रूप से समझ सके मेरे हृदय के गुह्य बातों को और पूरे दुनिया को प्रकट कर सके। जब रूप गोस्वामी वापस लौट कर आए कुटिया में, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने इसके एक मेरे मन को कैसे जान लिया, और रूप गोस्वामी कुछ बोले नहीं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको थप्पड़ मारा। उसी दिन रूप गोस्वामी एक किताब, चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप क्या लिख रहे हो जरा दिखाओ, और रूप गोस्वामी ने अपने एक श्लोक दिखाया जो कि पत्ते के ऊपर लिखा था। वो उसके हाथों की हैंडराइटिंग देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, पढ़ने से पहले ही, और वो कहने लगे ये आपकी जो लेखन है मोतियों की लड़ी की तरह है। और उन्होंने श्लोक पढ़ा, मेरे को पता नहीं है कितना अमृत है ये दो अक्षर में है कृष्णा, इतना आनंद प्रसन्न। जब मैं नाम बोलता हूँ कृष्णा तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों लाखों जीवा हो, और जिससे कि मेरे जीवा पर नाम नित्य कर सके, और जब ये नाम एक कानों में प्रवेश करता है तो मेरे पास लाखों लाखों कान हो, जब मेरे हृदय में आता है तो मेरे हृदय को जीत लेते हैं और मेरी इंद्रियां मन स्तब्ध हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर ने कभी सुना नहीं था, इतना सुंदर हरि नाम की महिमा उन्होंने कहीं सुनी नहीं थी। और अगले दिन चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को लेकर आए, और उनके बहुत ही निकट पार्षदों को लेकर आए, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिखे हुए वचनों को पढ़ने लगे। वो बहुत सुंदर चरितामृत में इतना सुंदर, और सब कंक्लूजन है, मीटिंग का अंतिम भाग है, सारे पार्षद भगवान स्वयं भी सब स्थापना कर देते हैं कि रूप गोस्वामी जो व्यक्ति हैं जिनको शक्ति प्राप्त हुई ये हमारे संप्रदाय के नेतृत्व कर सके, और इसलिए सारे गौड़ीय संप्रदाय हम रूपानुगत जो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को पालन करते हैं। भगवान ने इनको फिर वापस वृंदावन वापस भेज दिया। फिर सनातन गोस्वामी के साथ वो सब तीर्थों का खोज कर रहे थे, किताब लिख रहे थे, वो गोपियों के भाव में प्रेम का अनुभव कर रहे थे, अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे थे। रूप गोस्वामी ने जब अचिंत्य था जो उन्होंने किया, जिनके हृदय में एक ही दुख था, एक खालीपना लग रहा था, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष चाहते थे कि रूप गोस्वामी वो राधा गोविंद के विग्रह को खोज के निकाले। श्री रूप गोस्वामी सारे ब्रजभूमि में खोज रहे थे, मंदिरों में जाते, घरों में जाते, ब्रजवासियों के सब बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, शास्त्रों में देख रहे थे और ढूंढ रहे थे, लेकिन गोविंद देव कहाँ है वो पता नहीं चल पा रहा, जो कि मुख्य विग्रह है प्राचीन समय के अनुसार, जो वजनों में स्थापित विग्रह इस इलाके में गोविंद देव है। एक दिन रूप गोस्वामी बैठे हुए थे यमुना के किनारे, और उनके हृदय में एक भारीपन महसूस हो रहा था। एक ब्रजवासी बालक वहां पर आया, वो इतना सुंदर, बोले स्वामी जी क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? और वो बालक रूप गोस्वामी के प्रेम को जीत लिया, उसने मेरे हृदय की बात बताई। रूप गोस्वामी बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े वैरागी भी हैं, और अपने हृदय की बात एक छोटे बालक को बता रहे हैं। मैंने सब जगह पर ढूंढा, मेरी चेतना महाप्रभु के कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाया, कि मैं गोविंद को नहीं खोज पाया। और वो बोला कि आप चिंतित मत हो, मुझे पता है गोविंद देव कहाँ पर हैं। एक पर्वत, इसका नाम है गोमूत्र टील, वहाँ पर एक सुरभि गाय रोज आती है और अपना दूध वहाँ पर डालती है। कोई उसको दूध निकालता नहीं अपने आप से, वो जमीन पर जाता है, उस जमीन के नीचे वहां पर गोविंद देव। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा। रूप गोस्वामी को लेकर गए और पर्वत के पास में आए तो गोमूत्र टील बोलते हैं, और वहां पर रूप गोस्वामी गाय को देखा, सब सब दूध निकल रहा था। और बालक अप्रकट हो, बालक दिखाई नहीं पड़ा, रूप गोस्वामी समझ गए वो स्वयं गोविंद था। वो बालक कृष्ण आए मेरा हाथ पकड़ के, और मैं पहचान ही नहीं सका। मैंने उनको सेवा भी अर्पण नहीं की। रूप गोस्वामी बेहोश हो गए बहुत समय के लिए। जब वो चेतना में आए वो समझ गए कि मेरी सेवा के, और सारे ब्रजवासी को बताने लगे कि गोविंद देव जमीन के अंदर हैं और सब वहां पर है। और जब वो स्थान के पास में पहुंचे, भगवान बलराम जी एक अप्रकट आवाज के रूप में कहने लगे और बताया कि कहां पर खुदाई करनी है। और जब उन्होंने खुदाई की, उनकी आंखों के सामने गोविंद देव प्रकट हुए। लाखों कंदर पर से ज्यादा मोहित करने वाले, सुंदर, सब आश्चर्यचकित हो गए, सबका हृदय पिघल गया। वो गोविंद देव को बाहर ले आए और वहां पर स्थापना की गई। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव की पूजा शुरू की। कुछ समय बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो तपन मिश्र के पुत्र थे, जो चेतन महाप्रभु की प्रेम से सेवा किए जब वो छोटे बालक थे वाराणसी में, चेतन महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा, अपने माता पिता के साथ रहो, तो महान वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो। और उनके जब पुरी में गए, चेतन महाप्रभु के प्रसाद बनाते मस्कर, चेतन महाप्रभु को वाराणसी वापस भेजा और बोला कि तीन चीजें करना, पहले ब्रह्मचारी रहो, माता पिता की सेवा करो, और एक सीनियर वैष्णव गाइडेंस में श्रीमद् भागवतम पढ़ो। उनके माता पिता की मृत्यु तक उन्होंने सेवा की, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुरी में जाओ और चैतन्य महाप्रभु के पास रहो, और भगवान के साथ 8 महीने पहले रहे हैं, और फिर भगवान ने उनको जाओ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ रहो वृंदावन में। वो बहुत ही शक्तिशाली वैष्णव बन गए। उनके एक शिष्य राजा मान सिंह अकबर के राज्य में थे, उन्होंने राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण किया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं क्योंकि वो गोविंद देव को उन्होंने मुरली अर्पण की और मकर के आकार के कुंडल अर्पण की। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो पेड़ों के नीचे रेती में लेटते थे, लेकिन दासों के दासों के दास बने। रूप गोस्वामी के लिए उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बने, पूरे भारत में सबसे सुंदर मंदिर गोविंद देव का बना है। फटे हुए कपड़े पहनते और गोविंद देव के शरीर को मणियों से सजाया। श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं आत्मा की प्रसन्नता जो है वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने में। कितना भी सुंदर हमारा घर क्यों ना, हमेशा चिंता का स्रोत रहेगा। कुछ दिन पहले मैं कार में जाता ब्रह्मचारी के, मैं एक बड़ा सुंदर घर देखा रास्ते, मुझे चिंता थी क्योंकि वो घर इतना अच्छा नहीं था। कितना पैसा कितना समय, लेकिन वो अच्छा नहीं था। मुझे मैंने ब्रह्मचारी को देखा, आप जमीन पर लेटते हो, मस्किटो नेट में अंदर 20 रुपये, और सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुखी है। कितना धन कर, स्थान को कितना भी अच्छा करो, चिंता का स्रोत बन जाता। शरीर को भी कितना सजाए, वो कभी हृदय को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और हीरे और मणि सब सजाए हुए हैं, अपने शरीर को शरीर बूढ़ा होने वाला और बिल्कुल जीर्ण हो जाए, बीमारी होगी शरीर में। कितने सुंदर बाल को सजाए तो भी अपने सफेद हो जाते हैं। रघुनाथ भट्ट ने सिखा रहे सुख का रहस्य, कृष्ण को प्रसन्न करो। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करने का सजाने का प्रयास करो, अपने आप को सजाने की जरूरत नहीं पड़े, आप जो भी करोगे कृष्ण के लिए करोगे। अगर कृष्ण को अच्छे अच्छे भोग अर्पण किए तो आप किसी भी चीज में संतुष्ट हो जाओ। भक्ति का मतलब है एक कला है, वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के। जैसे पेड़ के जड़ में हम पानी डालते हैं तो पेड़ का हर एक भाग को पानी मिल जाता है, जब पेट में भोजन दिया जाता है हर एक भाग को पानी मिल जाता है, संतुष्ट हो जाता है। रघुनाथ भट्ट इसके मूर्तिमान स्वरूप, उनके शिष्य थे जिन्होंने 7 मंजिले का राधा गोविंद मंदिर बनाया जो उत्तर भारत का है, और वो स्वयं जमीन के जमीन के लिए हम उनकी नकल नहीं कर सकते। महाजन ये न कहता सरपंच, उनके पद चिन्हों में महात्माओं के पद चिन्हों में चलने, ये जीवन की पूर्णता है। जब रूप गोस्वामी ने एक पत्र भेजा चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर में गए और जब वहां पर थे अपने भक्तों से कह रहे थे कि मैंने रूप गोस्वामी से कुछ बहुत समय से सुना नहीं, जैसे उन्होंने कहा एक संदेश वाकर रूप गोस्वामी से पत्र लेकर आए। उसने पत्र प्राप्त न ऐसे ढूंढना होता था जो कि हजारों मील चलने को तैयार हो पत्र देने के लिए। तो बहुत अच्छे दिन थे। हाँ आजकल तो कुछ नहीं कर सकते छठ गोस्वामी के तुलना में। हमारे पास ईमेल है सेलफोन तो गलत बटन लगा था पूरे दुनिया को गलत समाचार जा सकते। इतना महाप्रभु को संदेश मिला उन्होंने भक्तों को दिया और बोले मैंने राधा गोविंद को प्राप्त कर लिया। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए उन्होंने गोविंद और काशीश्वर को बुलाया। काशीश्वर जो गोविंद के साथ ईश्वरपुरी के सेवक थे और उन्होंने बताया कि ईश्वरपुरी ने मुझे बताया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि सर्व भट्टाचार्य ने बताया कि गुरु की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं और वो गुरु की आज्ञा जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी सब चीजें कृष्ण। उन्होंने उनको पैर मसाज करने के लिए कहा महाप्रभु उनको बताया कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप वृंदावन जाइए और छह गोस्वामियों को मदद करके राधा गोविंद जी की सेवा कीजिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु का वो कशेश्वर पंडित के लिए बहुत दुखदायक बात थी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवा देना उनका संग छोड़ना त्यागना चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि उनका चैतन्य ने स्वयं उनको खुद का एक विग्रह प्रदान किया। उस विग्रह के नाम थे गौर गोविंद कृष्ण के छोटे विग्रह। चैतन्य ने उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ उन्हें आप गोविंद के दाहिने साइड में रखे और जब भी आप उनको भोगार्पण करेंगे गौर गोविंद को आप मुझे स्वयं उसमें देख पाएंगे और जब भी आप गोविंद गौर गोविंद को वर्षित करेंगे जो आप पूजा करेंगे तो आप मेरा अनुभव पर करेंगे। काशेश्वर पंडित ने उस समुदाय को वृंदावन में लाया और गोविंद के बाजू में उनकी स्थापना की और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी और बहुत सारे भक्त एकत्रित होकर सेवा राधा गोविंद के करने लगे। प्रतापपुत्र महाराज के पुत्र उनका नाम था पुरुषोत्तम चाणक। उन्हें श्रीमती राधा रानी की विग्रह को गोविंद देव और मदन मोहन के बाजू में उनको स्थापित करना था क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सिर्फ कृष्ण के विग्रह प्रकट हुए थे, परंतु गोस्वामी उन्हें दिव्य दृष्टि थी देखने की कि कृष्ण और राधा रानी ये कभी भिन्न नहीं हो सकते वृंदावन में। कृष्ण के जो हृदय है वो हमेशा हृदय में राधा रानी रहती है, तो इसलिए मदन मोहन और गोविंद देव की पूजा करते समय वो स्वयं देख सकते थे कि कृष्ण के हृदय में वो राधा रानी की भी पूजा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जन लेकिन सोच रहे थे बाकी हमारे लोगों के लिए राधा रानी जो है वो उनके बाजू में होनी चाहिए, तो इसलिए उनका मुख्य प्रयास जो था वो था उसके द्वारा उन्होंने दो सुंदर सुंदर श्रीमती राधा रानी के विग्रह को बनवाया और उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया। हर कोई वृंदावन में बहुत ही उत्साहित थे, वो श्रीमती राधा रानी को स्थापना करने के लिए उत्सव की तैयारी करने लगे। जब दो राधा रानी के विग्रह को लाया गया, दो उत्सव के बीच में पुजारी मदन मोहन के जो थे उन्हें दृष्टांत हुआ स्वप्न में, जहां पर राधा रानी प्रकट हुई और कहा कि अगर सो देखा जाए तो कि ये दोनों मेरे ही विग्रह ऐसा, राधा रानी के विग्रह ऐसा लग रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा है कि एक राधा रानी है और दूसरे जो ललिता सती के विग्रह है और दोनों को एक दाएं और बाएं साइड में मदन मोहन के बाजू में स्थापित किए जाए। जैसे पुजारी ने सब राजाओं को बताया कि कैसा ऐसा हुआ है दृष्टांत स्वप्न, तो सबने स्वीकार कर लिया और सुंदर महोत्सव हुआ। राधा और ललिता दोनों को मदन मोहन के बाजू में स्थापित किया गया। बीच में पुरुषोत्तम जन उनको खुश थे, फिर भी उनको गोविंद के बाजू में राधा रानी की मूर्ति स्थापित करनी थी। और कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि वो प्रार्थना करते थे उस दोनों में, ऐसा नहीं कि बाजार में जाके आप कोई भी मूर्ति खरीद सकते थे, और बहुत ही विशेष चीज थी मूर्ति बनाना। फिर उनको दिव्य दृष्टि हुआ स्वप्न में और वहां पे राधा रानी प्रकट हुई उनके स्वप्न में और उन्होंने एक कहानी बताई उनको। कुछ साल पहले उत्कल या उड़ीसा इस देश में राधा नगर इस गांव में एक ब्रजवर्ण नाम का महान भक्त रहता था, जिनके पास राधा रानी के विग्रह थे और उनके पुत्र के रूप में उनके प्रेम करते थे, उनके ऊपर सेवा करते थे पूर्ण जीवन भर उस विग्रह की। परंतु उनका मृत्यु हो गया, उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो विग्रह कोई सेवा नहीं कर रहे थे इस विग्रह की। उस समय एक व्यक्ति उड़ीसा का राजा आया उस राजानगर गांव में और उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर राधा रानी की मूर्ति, वो कोई सेवा नहीं कर रहा है उसका, वो उसे पूरी लाने लगा और उन्होंने उसकी सेवा करना चालू कर दिया थोड़ी में। और कुछ साल के बाद वो लोग भूल गए कि राधा रानी उसकी उस लोग लक्ष्मी के रूप में पूजा करने लगे, तो इसलिए आप जगन्नाथपुर के मंदिर में जाएंगे तो आप अगर लक्ष्मी की पूजा कर रहे लोग अगर जाएंगे देखेंगे तो मैं राधा रानी हूँ, लक्ष्मी नहीं हूँ, और मेरे लिए क्या है आप मुझे वृंदावन लेके जाओ और गोविंद के बाजू में रखो। तो इसलिए सुंदर महोत्सव उन्होंने राधा रानी को गोविंददेव के दाहिने साइड में रखने के लिए भेजा वृंदावन धाम में। अपन और हम जारी रखेंगे कल। हरे कृष्णा, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। सारांश में श्री रूप गोस्वामी ये छह गोस्वामी वृंदावन के वो सही रूप से उन्होंने द्वार खोले हैं इस पवित्र और गुह्य भगवान धाम की हमारे लिए सबके लिए। उनके शास्त्र रचना के साथ उनके उदाहरण के साथ उन्होंने हमें वृंदावन प्रदान किया है। श्री भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर के आदेशानुसार भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेरणा के साथ चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद महाप्रभु की इच्छा शिल प्रपाद इस धाम से बाहर आए और जगत में संपूर्ण भ्रमण कर बारह बार भ्रमण कर किया और कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की। हमें सब जगत के सब लोगों को व्यवस्था कर दी गई कि जिसके द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर दिव्य वातावरण में प्रवेश कर सके और दिव्य चेतना में हम वृंदावन चेतना में हम प्रवेश कर सके, उसके लिए उन्होंने स्थापना की कृष्ण बलराम की। जब श्री प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वो रूप गोस्वामी को प्रार्थना अर्पण करते थे, बार बार वारंवार करते थे कि वो उनके गुरु महाराज के कार्य को संपन्न करने में सफल हो सके। उसके लिए उस समय श्रील प्रभुपाद उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सहयोग ही नहीं था उनके साथ। उन्होंने वृंदावन छोड़ा अमेरिका जाने के लिए, पाश्चात्य देश जाने के लिए, कुछ भी साथ में न लेके हुए, सिर्फ प्रेम साथ में लेकर और दया साथ में लेकर और कृष्ण का दिव्य नाम साथ लेकर और उनके पुस्तकों को साथ में लेकर 1972 में उन्हें जगत भर में कुछ भक्तों को लेकर वृंदावन में आए। कार्तिक महीने में रूप गोस्वामी के समाधि के वहां पर बैठकर और पूर्ण महीने में प्रभुपाद ने भक्त रसामृत सिंधु के ऊपर प्रवचन किए। और श्रील प्रभुपाद की दिव्य कृपा के कारण उनके शारीरिक अनुपस्थिति से मालती देवी यहाँ पर उपस्थित है, कुछ संगी यदुआ प्रभु, शेष प्रभु, संपूर्ण जगत से तीस चालीस भक्त उस समय कार्तिक महीने में आए प्रपद के साथ। और आज कार्तिक महीने में मुझे मालूम है हजारों लाखों भक्त वृंदावन आ रहे हैं प्रपद जी की प्रेरणा से।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।